दोस्तों, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हमारी बातचीत हुई एक शाओलिन के वॉरियर मंक के साथ। क्या आपको पता है कि शाओलिन के ओरिजिन्स इंडिया में है? पहले इंडिया में कल्लरी पायतु और योगा का जन्म हुआ, और फिर जाके शाओलिन में कंग फू और अलग अलग मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ। इस वॉरियर मंक का नाम है हर्ष वर्मा। दोस्तों, हर्ष वर्मा की खुद की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। ये पहले प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे और एक इंजरी की वजह से उनका प्रोफेशनल फुटबॉलिंग करियर वहीं ख़त्म हो गया। फिर जाके इन्होंने डिस्कवरी करी शाओलिन टेम्पल की चाइना में। ये चाइना में 4 साल के लिए रहे, वहाँ से शाओलिन मंक से उन्होंने ट्रेनिंग ली, और आज हर्ष उसी वॉरियर मंक कल्चर को इंडिया में फैला रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपका भी इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स में है, अगर आपका भी इंटरेस्ट ड्रैगन बॉल जी में है, अगर आपका भी इंटरेस्ट नारुतो में है, आपको ये वाली कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये है हर्ष वर्मा के साथ हमारा मार्शल आर्ट्स शाओलिन वॉरियर मंक स्पेशल, और उस स्पेशल का पार्ट 1। हर्ष वर्मा भाई, इट्स एन ऑनर। द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है।
थैंक यू। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने मुझे इनवाइट किया, आपकी टीम ने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
थैंक यू ब्रदर। ब्रदर, आप पहले इंडियन हो जिन्हें शाओलिन टेम्पल से एक वॉरियर मंक बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मिली है। आई थिंक दी ऑफर स्टिल ओपन ब्रदर, राइट?
तो क्या होता है कि जब तक मैं टेंपल में रहता हूँ तो तब तक वॉरियर मॉन्ग ड्यूटीज़ और जो हम ओथ्स लेते हैं वो चलती रहती है। सर्विस जब चलती है टेंपल में, तो जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारे शीफू से डिस्कशन होता है कि अभी लाइफ में क्या करना है, क्या ये कल्चर को फॉरवर्ड लेके जाना है। तो उस हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉन्ग्स, 2 तरीके के होते हैं। एक वॉरियर मंक होते हैं और एक स्कॉलर मंक होते हैं। जो वॉरियर होते हैं जो योद्धा वाले होते हैं, और जो स्कॉलर होते हैं वो जो नॉर्मल जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते, पढ़ाई करते चीज़ों के बारे में, सूत्रस के बारे में, बुक्स के बारे में, भजनों के बारे में, ऑल दीज ये सब चीज़ें जो है बेसिकली। तो मैं वॉरियर मंक का टाइटल का मुझे पुरस्कार मिला और उन्होंने मुझे गोद लिया, अडॉप्ट किया, अब्सॉर्ब किया, और हाँ जी, पहला हिंदुस्तानी हूँ।
क्रेजी ब्रो, जो आपने कहा कि एक योद्धा मंक, तो युद्ध किसके साथ होता है? जब वॉरियर मंक का टाइटल हम स्कैन करेंगे तो आप युद्ध किसके साथ कर रहे हैं?
इसमें देखो, युद्ध किसी के साथ नहीं होता है, इसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे जो कल्चर को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे खुद के, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो टेम्पल है, हमारे जो बाउंड्रीज है, जो वॉल्स है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक ग्राउंडिंग होती है जो वॉरियर मंक एज फिज़िकल ट्रेनिंग जो करते हैं, तो वो एक कल्चर फॉरवर्ड कैरी भी हो रहा है और फिटनेस खुद के लिए भी कर रहे हैं, और टेम्पल को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है।
भाई, लोगों को एक्चुअली शायद ये पता है, इसी पॉडकास्ट में हमने एक हिस्टोरिकल एपिसोड किया था एक अभिजीत चावड़ा नाम के एक हिस्टोरियन है उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि शाओलिन टेम्पल का जो कल्चर है वो एक्चुअली एक इंडियन मॉन्क के साथ शुरू हुआ था जिनका नाम था बोधी धर्म।
जी बिल्कुल।
और शाओलिन टेम्पल में आप भी शाओलिन टेम्पल की हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ बोधी धर्म के बारे में भी लेसन्स है, स्क्रिप्चर्स है?
जी बिल्कुल। तो हमारा जो शाओलिन कल्चर है उसके 3 प्रिंसिपल हैं, 3 पिलर्स जो बोलते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो जो जैन बुद्धिस्ट फिलोसफी एक है, उसमें जो बुद्धिज़्म फिलोसफी जो होती है, जो बुद्ध भगवान ने जो फिलोसफी स्प्रेड करी है, 8 फोल्ड पाथ्स, उनके जो सूत्रास है, स्टार्टिंग लंकेश्वर सूत्रा, निर्वाणा सूत्रा से लेके लोटस सूत्रा तक जो लास्ट सूत्रा था, और फिर मार्शल आर्ट्स है, कुंफू है, और फिर लास्ट है हीलिंग जो मेडिसिन होता है। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेदा, योग, और हमारे जो कलरी पयत्तु जो साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है हमारी जो इंडियन की, तो ये सब वहाँ से आया हुआ है। और ये सब चीज़ों बोधि धर्मा ने खुद प्रयास किया था, ये चीज़ों का जो उनके जो मास्टर है माँ कसपा, तो माँ कसपा जी 28th disciple, डायरेक्ट डिसाइपल थे बुद्धा के, गौतम बुद्धा के। तो ये उनका स्टडी वहाँ से आता है। और अभी आप देखने जाएंगे जब बोधि धर्मा यहाँ से हिंदुस्तान से कांचीपुरम उनका जो गाँव का नाम है साउथ ऑफ इंडिया में, तो वो यहाँ से चाइना गए, चाइना में जाके उन्होंने ये कल्चर स्प्रेड किया, लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया, तो उनको वहाँ पर भगवान माना जाता है। बुद्ध भगवान की प्रार्थना होती है, बोधि धर्मा जी की प्रार्थना होती है, उनके बारे में किताबें लिखी गई हैं, चाइनीज़ में भी लिखी गई है, चीन में भी लिखी गई है, तो उनको बहुत वो देवता माना जाता है और उनको हमेशा बोलते हैं फादर फिगर, फादर ऑफ शाओलिन कल्चर जो बोलते हैं।
आपका बुद्ध भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है एज अ वॉरियर मंक?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उतना ही डेप्थफुल आंसर जो मेरे को आता है। तो मेरे को किसी ने एक बार पूछा था कि ये जो बुद्धिज़्म है क्या ये एक रिलीजन है, क्या आप बुद्धिस्ट हो? तो मैंने बोला बुद्धिज़्म एक रिलीजन नहीं, बुद्धिज़्म एक लाइफस्टाइल है, इसको हम जीते हैं, हम इसकी ज़्यादा प्रचार नहीं करते, इसका ज़्यादा हम प्रीच नहीं करते, इसको ज़्यादा हम फोर्स नहीं करते लोगों पे, ये एक लाइफस्टाइल होती है। हम डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं, हम उठते तो क्या करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है डेली क्या होती है। तो बुद्ध भगवान ने सिर्फ ये चीज़ बोला था कि सिंपलिसिटी कैरी करो लाइफस्टाइल में और वो प्रयास के थ्रू होती है। तो मेरा जो कनेक्शन है बुद्ध भगवान से वो है लाइफस्टाइल वाला कनेक्शन, और कुछ नहीं।
क्या बुद्ध भगवान भी एक वॉरियर मंक थे, मतलब क्या उन्हें भी मार्शल आर्ट्स आते थे?
अभी इसमें काफ़ी कुछ लिखा है नहीं लिखा है, कुछ कंटेम्प्लेट नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध भगवान डेफिनेटली उनका जो योगिक पावर था, जो कॉस्मो पावर बोलते हैं, वो बहुत सबसे हाई था। क्योंकि उनने इतनी तपस्या की, उतने इतना सारा मेडिटेशन करा कि उनका जो विल पावर था, अगर किसी से उनको किसी से कुछ बुलवाना है, किसी को कुछ समझाना है, तो वो उनको मैन्युपुलेट नहीं करते थे, पर उनको इतना सिंपल सा एग्जांपल देते थे जो रियल लाइफ में जो एसेंस होता है चीज़ों का, तो वो चीज़ों से उन लोग उनको फॉलो करने लग जाते थे। तो ये बुद्ध जी की आई थिंक एक स्पेशलिटी थी। और अपार्ट फ्रॉम वो योद्धा, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो योद्धा नहीं थे, लेकिन उनका जो वॉरियरशिप मुझे लगता है वो उनका मेडिटेशन लगता है।
ब्रदर, आपकी खुद की स्टोरी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपसे इतने डीप सवाल मुझे पूछने थे कि मैं आपकी स्टोरी के बारे में बात करना भूल ही गया।
प्लीज़।
पर आप बेसिकली ट्रेन कर रहे थे एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए जब आप टीनेजर थे। आप मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल से, वहाँ की फुटबॉल टीम एक महान फुटबॉल टीम मानी जाती है और शायद आप वहाँ के एक स्टार प्लेयर थे, और फिर आपको एक बहुत इंटेंस नी इंजरी हो गई
जी।
और फिर वहाँ से लेकर हाउ डिड यू लैंड अप इन द शाओलिन टेम्पल, ये स्टोरी क्या है?
मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था जब जमनाबाई में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी फुटबॉल खेलने की। इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स होते थे,
एम एस एस ए
होता था, और फिर काफ़ी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे। तो उसके बाद मैं उसके बीच में ना मैं 3 साल के लिए बोर्डिंग स्कूल चला गया।
ओके।
क्योंकि हमारे बॉम्बे में तभी ग्रास का फुटबॉल ग्राउंड नहीं था, और ये वही बोर्डिंग स्कूल था पूना में जहाँ पर ग्रास का फुटबॉल ग्राउंड था, और जिसने मुझे बहका दिया और मैंने कमिट कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे मैं एडमिशन लूँगा।
रिवरडेल?
नहीं, मैं था बिरला हाई स्कूल में।
ओके ओके।
बी के बिरला सेंटर फॉर एजुकेशन जो जस्ट पूना वॉरियर स्टेडियम के जस्ट पहले ही है।
ओके।
तो उसमें मैं बह गया, मैं जमनाबाई में था 7th तक, फिर 7th के बाद मैं 3 साल के लिए वहाँ पर गया बोर्डिंग स्कूल के लिए, और फिर वापस आया मैं खेलने के लिए। लेकिन जब मैं पूना में था तो तभी मेरा प्रोफेशनल ग्राफ फुटबॉल का बहुत बढ़ गया। मैं पूना के लिए खेलने लगा, मैं एथलेटिक्स महाराष्ट्र के लिए रनिंग करने लग गया, ट्रैक एंड फील्ड करने लग गया, 100 मीटर 200 मीटर्स हाई जंप करने लग गया। तो वो मेरे को स्पोर्ट्स का जो डायमेंशन ज़्यादा मिला, जैसे डेफिनेटली जमनाबाई तो मेरी जड़ है, मेरी रूट्स है जहाँ से मुझे फुटबॉल का अपॉर्चुनिटी मिला और मेरे को काफ़ी ट्रेन हुआ यहाँ पर जाके। मैं आई थिंक जब मैं ग्रो होने लगा एज अ टीनेजर जैसे आपने कहा, तो मुझे एक्सप्लोर करने मिल गए अपॉर्चुनिटीज़ में, कहाँ कहाँ खेल सकता हूँ, कहाँ कहाँ और बेटर हो सकता हूँ। तो मैं वेस्ट जोन क्लस्टर्स होते थे जहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, गुजरात सबके कलेक्टिवली स्टेट कंपटीशन होता था, तो उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। आई वाज जस्ट 14-15 ईयर्स ओल्ड, आई प्लेड फॉर अंडर 19 के लिए, मैं 14-15 साल का था, तो उसमें मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला। और फिर मैं वापस आया तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी टीम के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला, केंकरी अकेडमी, वेरी फेमस, हमारे स्कूल से काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे खेलने के लिए जमनाबाई से, तो वहाँ पे खेलने मिला। फिर सेकंड डिवीजन खेला, फिर आया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेकंड डिवीजन जो पीफा करके एक अकेडमी थी बैंड्रा में, सेंट एंड्रूज में, जहाँ हमारा ट्रेनिंग चलता था, तो वो लोगों ने AC मिलान का कुछ कैंप का अपॉर्चुनिटी निकाला, तो AC मिलान का कैंप के लिए गए हम लोग, इटली में रहे, वहाँ की लोकल लीग खेली, तो ये सब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेस्टर सिटी की अपॉर्चुनिटी आई, तो वहाँ सिर्फ खेला।
और
तो,
वहाँ भी आई एम श्योर कि यू वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स।
आई मीन आई वुडंट वांट टू से दैट, बट या यू कैन से क्योंकि ऑडिशंस होते थे, ट्रायल्स होते थे, कौन केपेबल है कौन नहीं है. तो आई वॉज केपेबल एनफ टू गेट क्वालिफाइड, सो आई क्वालिफाइड टू यू नो बींग टू गो ओवर देयर, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करना.
आपकी पोजीशन क्या थी तभी?
मैं हमेशा लेफ्ट फॉरवर्ड खेलता.
वाओ, ओके.
इधर स्ट्राइकर और लेफ्ट विंग.
ओके.
कि मैं बहुत फास्ट रनर, काफ़ी तेज़ भागता हूँ. मैं 100 मीटर भी इसलिए रखता था, 200 मीटर भी.
क्रेजी.
तो अपॉर्चुनिटी मिली और यही प्रोसेस में तो मुझे एक डिफॉर्मिलिटी हो गई नी में, क्योंकि मम्मी मुझे वो हमारे बचपन में याद है आपको कि वो कैल्शियम सैंडस के टैबलेट्स होते थे, वो जो डॉगी वाले जो होते थे वाइट कलर के, ब्लू कैप वाले, तो मम्मी मुझे बहुत खिलाती थी. और मुझे दूध पीने का बहुत शौक था मुझे, तो मैं 1 लीटर दूध रोज़ पीता था. उसकी वजह से मेरे बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ गया,
मतलब उस कॉम्बिनेशन की वजह.
हाँ जी, वो कॉम्बिनेशन की वजह से. और उसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो गई मेरे नी में.
स्पर कहते हैं ना,
ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा कहते हैं उसको, जो जो टेक्निकल आई थिंक सर्जिकल टर्म जो बोलते हैं, यू हैव एन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोलते हैं. तो उस वजह से मेरे नी के रिस्ट्रिक्शन, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो बेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग नहीं हो रहा था. तो इस वजह से मुझे काफ़ी बाधाएँ फेस करनी पड़ी.
आपकी एज क्या थी
जब मुझे ये इसके बारे में मालूम पड़ा? मेरी उम्र थी, मेरा सर्जरी 2014 में हुआ, लेकिन इस ये चीज़ डिटेक्ट 8 ईयर्स बैक ही हो गई थी, लेकिन वो बहुत छोटा था. फिर 2014 में काफ़ी हद तक मुझे बॉदर करने लग गया था.
मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड में होने लगा ये?
हाँ, तो अराउंड 10th के बाद, क्योंकि 11th के बाद मुझे डिस्कवर किया कि काफ़ी बढ़ गया है ये. ऑलरेडी मुझे 9th या 10th में मालूम पड़ गया था, लेकिन काफ़ी बढ़ने लगा था. उसके बाद फिर ये काफ़ी अभी एकदम बढ़ गया. अभी जिस 6-7 साल की बात है, तो उसके लिए मुझे सर्जरी कराना पड़ा. और जब सर्जरी किया तो तभी मालूम पड़ा इसमें साथ में ट्यूमर है थाई मसल के बीच में, तो वो ट्यूमर निकालना पड़ा, विच वाज नॉन कैंसरस बाय गॉड्स ग्रेस, इट वाज नथिंग सीरियस. तो वही सब हार्डशिप्स फेस करने पड़े. बट फुटबॉल करियर वाज डेफिनेटली ऑन माय माइंड. मेरे डैड मॉम भी चाहते थे कि मैं फुटबॉल करियर बनाऊँ, एंड आई यूज टू बी अ गुड प्लेयर, आई कैन से दैट, बिकॉज मैंने उतनी ही मेहनत करी, एंड फुटबॉल इज एंड विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव.
तो जब ये सब हो रहा था आपके साथ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था?
यार मेरे दिमाग में तभी चल रहा था यार मैं फुटबॉल खेल पाऊँगा, मैं भाग पाऊँगा या नहीं, ये मेरे सबसे पहले दिमाग में चल रहा था. कि यार मेरे कॉम्पिटिशन्स में मैं जा पाऊँगा या नहीं, यार मैं और इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ, ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो ये सब चीज़ें काफ़ी चलते थे, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होता था, क्योंकि वो बार बार ना वो एक ट्विचिंग पेन आता था, क्योंकि मेरा स्किन वो बोन पर रब हो रहा था बार बार, तो मेरे को महसूस होता था वो. तो उस वजह से फिर मैंने 2-3 डॉक्टरों की राय ली, तो तभी बोला था अरे इतना बड़ा नहीं, हमारे डॉक्टर लोग यहाँ के, जहाँ के भी आई डोंट नो, बट यहाँ पे हमारे होते लोग के अरे अरे कुछ नहीं होगा, देखते आगे देखेंगे, फ्यूचर पे छोड़ देते. पर आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी. आई थिंक उसको अगर पहले ही हम ट्रीट कर देते तो इतना बड़ा नहीं होता और इतनी बड़ी सर्जरी नहीं थी. बट एनीवेज, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है.
मतलब जिस पाथ पे आपको होना चाहिए लाइफ में, वो कभी कभी भगवान ऐसे आपको डाल देता है उस पाथ पे.
जी बिल्कुल.
ये मैंने नोटिस किया पॉडकास्ट के थ्रू भी, जब मैं लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, जब उनके हार्डशिप्स के बारे में सुनता हूँ, तो मैंने ये रिपीटेडली देखा है कि अगर आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में शाओलिन टेम्पल जाना लिखा था, तो कहीं ना कहीं से आपको वो शाओलिन टेम्पल तक पहुँचा ही देते. तो ये कैसे हुआ भाई? क्योंकि आई फील ऑनेस्टली उस जोन से पास होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल टफनेस की ज़रूरत शायद थी तभी, और फिर वहाँ से लेकर आप फिर वॉरियर मंक बन गए. तो ये कैसे हुआ?
ये जो जर्नी थी बहुत ही इमोशनल थी. ये बहुत ही डेफिनेटली हर एक जर्नी जो इमोशनल थी उसके साथ हार्डशिप्स, टफनेस आती है लाइफ में. डेफिनेटली आपकी भी जो जर्नी होगी, जो आपने मुझे बताया कि आप कैसे फिटनेस में थे, आप इंजीनियरिंग करी और फिर आप आके इतनी बड़ी आपकी टीम है और अब इतना अच्छा कर रहे हैं, यू नो, सोशल मीडिया पे आपकी खुद की भी मीडिया एजेंसी, एवरीथिंग इज देयर, यू नो, लाइक यू वर्क फॉर इट. आपने भी हार्डशिप्स काफ़ी फेस करी. वैसे ही हमारी भी ऐसी जर्नी थी कि सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी नहीं हो रहा था ढंग से. तो लोग मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो मुझे चाहते थे कि एज एन एथलीट मैं हील करूँ, लेकिन फर्स्ट आई थिंक उन लोगों को देखना चाहिए था कि एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग मैं वॉक करूँ. ये एक मैंने चीज़ बाद में नोटिस की. तो ये इसकी वजह से मुझे फिजियोथेरेपी यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था घर पे बैठे बैठे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं. और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं अपने आप से टाइम बिताने के लिए भी बोर हो रहा था. मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि अरे मैं पूरा दिन बेड पर ही बैठा रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो, यू नो, फिज़िकल मूवमेंट की आदत है, लेकिन फिर घर पर बैठे एक्सबॉक्स खेल रहे, प्लेस्टेशन खेल रहे, टीवी देख रहे, वही मोनोटोनस चल रहा है। कभी ठीक होगा, कभी ठीक होगा यार, मेरे को जाके भागना है, मुझे थोड़ा मेहनत करना है, कुछ तो करना ही है। तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन, बोला यार कहाँ जा सकता हूँ मैं चल साउथ इंडिया जाता हूँ, वहाँ पर कुछ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पर शायद से मुझे फिक्स कर पाए। यहाँ पर तो सब डॉक्टर्स वही पैसे के पीछे पड़े थे, फिजियोथेरेपी के लिए ये वो चल रहा था, इंडियन टीम कर करके सब पैसा ही निकालते। उसके बाद फिर मेरे एक भाई समान है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मार्शल आर्टिस्ट है प्रतीक करके, तो वो आते थे मुझे घर पर मिलने के लिए, या मैं उनको कभी कभार मिलने जाता था योगा करने के लिए, ताकि मेरा ब्रीदिंग के लिए या मेरे लेग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने। तो उन्होंने बोला यार तू मार्शल आर्ट्स का जो कंडीशनिंग होता है ना वो कर। तो मैं बोला यार मार्शल आर्ट्स कौन सिखाएगा, कहाँ करूँ मैं, यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए नहीं तो तू बाहर चला जा, तो इंडिया में मत कर। बोला कहाँ जाऊँ मैं, तो बोला कि देख तू कहीं भी जा, एशिया में आए, एशिया में इतने सारे मार्शल आर्ट है, जापानीज मार्शल आर्ट, चाइनीज़ है, थाई का है। तो तभी डैड के थोड़े कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे थाईलैंड के, तो मैंने बोला चलो वहाँ पे होंगे तो मैं उनसे पूछता हूँ या किसी से रिसर्च करता हूँ। तो वो मेरे बजट में नहीं बैठ रहा था, तो मेरे सेविंग्स जितने भी था, तो मैंने बोला यार यहाँ तो नहीं जा पाऊँगा मैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला यार शाओलिन टेम्पल में ना मेडिसिन भी होता है, चाइना में मेडिसिन होता है, चाइना का मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन का कुछ। तो मैंने बोला ठीक है देखता। तो मेरा चाइनीज़ मेडिसिन से सर्च नैरो हुआ शाओलिन टेम्पल, क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन का बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा था बीजिंग में। उसके बाद शाओलिन टेम्पल पर आया मैं, तो वहाँ पर उन्होंने बोला हीलिंग, सिर्फ हीलिंग लिखा था, कुछ मेडिसिन टर्म ऐसे कुछ हाई फाई कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ हीलिंग लिखा था। तो तभी वो हीलिंग टर्म मुझे अट्रैक्ट किया, मैं बोला हीलिंग मतलब ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, एंड प्लस मार्शल आर्ट्स बोला, तो मैंने कनेक्ट किया हीलिंग प्लस मार्शल आर्ट्स का, मुझे कंडीशनिंग हो गया तो इससे मैं बेटर हो सकता हूँ एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, टू वॉक मुझे हील करे और फिर मार्शल आर्ट्स का कंडीशनिंग करे तो मैं बेटर हो सकता हूँ। तो मैंने उनको काफ़ी चेज़ किया ईमेल पे, कॉल पे, तो स्टार्टिंग में अराउंड 2-3 वीक्स तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, और फिर मैंने उनको मेरे रिपोर्ट्स भेजे तो रिप्लाई आया, तो मैंने उनको मेरे रिपोर्ट्स भेजे, बताइए, बोला हाँ हम कर सकते हैं, बोला कि एक्यूपंक्चर होता है, नीडल्स रहता है, ट्रांसलेटर आएगा बताएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चाइनीज़, सब चाइनीज़ बोलते, कोई इंग्लिश नहीं बोलता या हिंदी जो भी नहीं बोलते। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट बैरियर था मम्मी पापा से कन्विंस करने का, तो लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे, बोला अरे चाइना में कौन है क्या है, हमारा तो कोई नहीं, जान पहचान ही नहीं है, वरना तो हिंदुस्तानी लोग तो यहाँ है, हमारी फैमिली लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ पे क्यों जाना। तो कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आपकी युद्ध अकेले ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप ही अपने बैटल को समझ पाओगे और कोई नहीं समझ पाएगा,
शायद आपकी फैमिली भी नहीं,
इम्पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड, मेरे को ऐसा लगा तभी, उस वक्त मुझे ऐसा लगा। तो मैंने मेरे वो जो भाई समान प्रतीक भाई उनको मैंने बोला कि भाई आप कन्विंस करो कैसे भी करके, यू नो मेरे पास इतने पैसे, आई थिंक ये पैसे मैं 3-4-6 महीना तो मेरा निकल जाएगा। और उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, फिर बैठ के समझाया, तो अग्री किया, वो सब हुआ फॉर्मेलिटीज़, फिर स्ट्रेट टू शाओलिन टेम्पल पर पहुँचा मैं।
शाओलिन टेम्पल है कहाँ?
शाओलिन टेम्पल इज़ इन मेन लैंड चाइना, और इट्स इन हनान प्रोविंस, हनान प्रोविंस करके है जो सेंट्रल वेस्ट ऑफ बीजिंग में है, इट्स अ बिग प्रोविंस, एंड जो शहर है जो आप लैंड करते हो उसका नाम जंगजोउ सिटी है, दैट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ चाइना। और जंगजोउ सिटी से 2 घंटा दूर 1400 फीट अबव सी लेवल इज़ वेयर शाओलिन टेम्पल इज़ इन डनफंग सिटी विच इज़ अबव ऑन द माउंटेंस।
अच्छा,
तो वहाँ पर शाओलिन टेम्पल
है। पता है मतलब कोविड की वजह से अक्सर हिंदुस्तानी लोग चाइनीज़ लोग से बहुत नफरत करने लगे हैं आजकल, ये नैरेटिव है, पर चाइना होता कैसा है, मतलब क्या है, मतलब लोग कैसे हैं वहाँ, लाइफ कैसी है वहाँ?
मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा लाइफ टेंपल के बाहर देखी नहीं है, जो भी मैंने देखी है, जब मैं वॉरियर मॉन्ग बना, जब वॉरियर मॉन्ग का पुरस्कार मिला, तो मैं काफ़ी शोज़ के लिए, मार्शल आर्ट शोज़ के लिए मैं ट्रैवल करने लग गया इन एंड अराउंड चाइना, एशिया में, अब्रॉड में, और इन चाइना काफ़ी ट्रैवल किया मैं, प्रिसाइसली मैंने हर एक स्टेट देख लिया हूँ चाइना, हर एक प्रोविंस बोलते हैं वहाँ पे। चाइनीज़ लोग जो हम मॉन्क लोग, ये डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि उन लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है आउटसाइड वर्ल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ अटैचमेंट कुछ नहीं है, कम्प्लीटली डिटैच्ड अपने लाइफ में, अपने कल्चर में, अपने टीचिंग में इन्वॉल्व्ड है। नॉर्मली अगर आप मेरे को ऊपर से अगर पूछना चाहे चाइनीज़ लोग कैसे हैं, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन इज़ नाइस, दैट इज़ द वे आई परसीव एवरीवन, वैसे ही मैं सबको देखता हूँ, एवरीवन इज़ नाइस। आपके जो एक्शंस, जो हम हिंदी में कर्मा बोलते हैं, आपके जो कर्म हैं वो डिफाइन करते हैं, आपकी जो सोच है वो डिफाइन करती है आप कैसे हो। तो जहाँ तक मैं लोगों आप कम मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके के लोगों के अक्रॉस आया हूँ वहाँ पे, जो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है कि आपको बुरा लग जाए यार मेरा कोई इतना भी नहीं इतना करे. और जो कोई काफ़ी लोग रेसिस्ट भी है, जो इनडायरेक्टली मुझे समझते थे कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, मैं यूरोपियन हूँ या मिडिल ईस्टर्न हूँ. इंडियन लोग तो एकदम काले होते, तो उन लोगों को सिर्फ वो साउथ इंडियन लोगों का स्किन का टोन याद है जो इंडियंस के लिए डिफाइन होता है. लेकिन मैंने बोला कि नहीं बॉस, आप महाराष्ट्र में आएंगे या नॉर्थ ऑफ इंडिया में कहीं भी जाएंगे ऐसा नहीं होता है. साउथ इंडियन लोग का स्किन टोन इज डिफरेंट एंड वी ऑल आर इंडियंस. अगर बोल रहे हैं इंडियंस तो आफ कम अक्रॉस दोनों टाइप के लोगों के. तो पीपल आर वेरी हेल्पफुल, काफ़ी लोग जो हेल्पफुल भी हैं, काफ़ी लोग है थोड़े से ऐसे पॉपुलेशन जो ट्रेडिशनल टिपिकल बोलते ना जो कल्चरल हाँ अकड़ू टाइप है. हाँ वैसे अकड़ू टाइप के लोग हैं जो ऐसे सोचते सिर्फ आई थिंक इंडियंस के अगेंस्ट नहीं, जनरली फॉरेनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग को अपने में ही इतना बढ़ावा है. एक्चुअली चाइना एक कंट्री नहीं माना जाता है अंदर, चाइना एक प्लैनेट माना जाता है. वो लोग के लिए चाइना एक प्लैनेट है जो नॉर्मल आउटसाइड टेम्पल वालों के लिए. तो वो लोग का एक्चुअली फिलोसफी ऐसा गवर्नमेंट फिलोसफी आई थिंक उसकी प्रोज ऑन कॉन्स जो दोनों ही विच इज़ गुड कि अपने ही देश को बढ़ावा, अपने ही कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, अपने ही अंदर ही जो हम अभी चालू किए इंडिया ने मेक इन इंडिया मूवमेंट, वहाँ पर तो पहले से ही हो रहा है यार, 100 साल पहले से ही हो रहा है वहाँ पर. जो उनके जो चाइनीज लीडर है माओ ज़ेडांग, तो आई थिंक उसके प्रोज एंड कॉन्स है. बट आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंस थे आई हैड गुड एंड बैड, बट वॉट मेरे लिए जो सबसे कीमती और मोस्ट महत्वपूर्ण जो बोलते हैं हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ टेम्पल में, और वो लोग मेरे से मेरी फैमिली है. तो मेरी जो फैमिली बोलता हूँ मैं, शाओलिन फैमिली है जिन्होंने मेरे को इतना अच्छे से रखा. और मैं अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को वैसा ट्रेन किया और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मेरे को ओपन रहना ये लोग का कल्चर लर्न करने, क्योंकि मैं ये लोग के यहाँ पर आया हूँ, ये लोग मेरे वहाँ पर नहीं आए. तो कभी कभार हम लोग वो एक एरोगेंस कैरी करते हैं, नहीं यार मेरे को ट्रांसलेटर चाहिए, मेरे को ये चाहिए. नहीं, क्यों, मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं खुद खड्डा खोदूँगा. जहाँ तक मुझे कुछ मिलता नहीं है वहाँ से कोई ये खड्डे से, मैं तब तक नहीं जाऊँगा. क्योंकि मेरे को इन लोगों की ज़मीन की ज़रूरत है, ये लोग को मेरी ज़रूरत नहीं है. तो मैं वो एक अप्रोच से मैंने हैंडल की मेरी सिचुएशन.
पहले आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करते थे बात करने के लिए, मैंने आपके एक आर्टिकल में पढ़ा, और फिर स्लोली आपने चाइनीज मैंडरिन
सिंपलीफाइड मैंडरिन. हाँ,
तो ये जर्नी कैसी रही, मतलब शाओलिन टेम्पल में आकर आपका पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना कैसा था? क्योंकि आई एम श्योर कि आप तभी भी शायद फिट थे, पर आपके नी में तभी भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे.
करेक्ट.
तो आपने ये समझाया कैसे उन्हें, आपकी पहली ट्रेनिंग क्या थी?
तो मैं जब लैंड हुआ शाओलिन टेम्पल में तो वो शाम का समय था और बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रहा था. और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस है वहाँ पे, उनकी ऑफिस से एक उनकी वो जो ऑफिसर की डॉटर आई थी मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी इंग्लिश बोलती थी, वो मेरे को पिकअप की एयरपोर्ट से और मुझे लेके जा रही थी टेंपल में. अभी इतना अंधेरा होने लग गया तो मेरे को लगा यार कहीं किडनैप तो नहीं हो रहा यार कोई ऐसे मूवी हुई तो उसका सीन ना हो जाए यार. तो मैं बोला कि ठीक है यार, लेके जा रही है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी और बोल रही उनकी डॉटर है तो ठीक है. देखा तो अंधेरा है, कुछ स्ट्रक्चर वक्चर दिख नहीं रहा था, पिच डार्क था, स्ट्रीट लैम्प्स कुछ नहीं था. पहुँचा मैं वहाँ पे और मेरे को मशरूम से एलर्जी है, बहुत भयंकर एलर्जी है. और चाइना में सिर्फ 33 टाइप्स के मशरूम्स ही है वेजिटेरियन लोगों के लिए.
आप वेजिटेरियन?
मैं वेजिटेरियन
बचपन से.
नहीं, मैं चाइना के पहले तो नॉनवेज खाता था, लेकिन जैसे ही मैं चाइना शिफ्ट हुआ, टेंपल में शिफ्ट हुआ, तो मैं प्योर वेज हो गया.
शाओलिन टेंपल वेजिटेरियन?
प्योर वेज, नो एग्स ऑल्सो.
वाओ,
प्योर वेज. इट्स अ टेंपल, इट्स एक मंदिर है जहाँ पे सिर्फ वेज खाना खाते हैं, जो बुद्ध भगवान को बोधि धर्म को प्रे करते हैं. तो मैं पहुंचा तो मुझे डॉर्मेट्री में मशरूम सूप दिया, और मेरे को मशरूम सूप मालूम नहीं था, मशरूम सूप बोला वेजिटेरियन सूप है, मैंने पिया और फिर मेरा रिएक्शन चालू हो गया क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ. तो फिर वो फिर अगले दिन सुबह हॉस्पिटल से एंटी एलर्जी शॉट लेना पड़ा. और ये मेरा फर्स्ट नाइट था. और सेकेंड डे मॉर्निंग में शॉट लेने के बाद मैं फॉरेन अफेयर्स ऑफिस गया, और बहुत ही सब कुछ खूबसूरत लग रहा था बिकॉज़ तभी बस सूरज उगा ही था, निकले थे बाहर, और देखा रेड स्ट्रक्चर, ब्राउन फिनिश, ग्रीन फिनिश, तो इतना खूबसूरत लग रहा था, देख रहे ऐसा लग रहा था मैं सेट पे आ गया हूँ. ऐसा जो मूवीज़ में देखी हमने 36 चेंबर ऑफ शाओलिन में, या जैकी चैन की जो 2011 में शाओलिन मूवी निकली थी, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे अरे कहाँ आ गया, यू नो वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है।
जो डॉक्यूमेंट्री आपने भेजी थी, उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने दो चीज़ों को नोटिस किया। पहले शाओलिन टेम्पल की एनर्जी आप नोटिस कर चुकी, बहुत पावरफुल एनर्जी। दूसरी चीज़, ये सुंदरता, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है।
करेक्ट।
एनी वे ब्रो, और बताइए।
तो जो एनर्जी आपने बोली, डेफिनेटली मुझे एनर्जी फील हुई कि हाँ, ये वही जगह है, ये सच में वो जगह है जो मेरे को एक्चुअली हील कर सकती है, जो मुझे मेरे प्रॉब्लम से निकाल सकती है। तो दैट वाज डेफिनेटली फर्स्ट थिंग आई फेल्ट। फिर उसकी सुंदरता को देखा मैंने, अरे यार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मैं पूरा स्ट्रक्चर्स देखा, टेम्पल का प्रॉपर्टी पूरा देखा, ऑफिस में जाके मैंने मेरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किए, डॉक्टर को विजिट करा, ट्रांसलेटर तभी थे साथ में, लेकिन ट्रांसलेटर हफ्ते में एक ही बार ही आते थे फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के।
ये टेम्पल दूर है शहर से?
हाँ जी, बिल्कुल दूर है।
और आसपास कुछ नहीं है?
आसपास नॉर्मली बस स्टॉप है, क्योंकि लोग आते जाते, बस स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड है, और टूरिज्म बहुत है, टूरिज्म से ज़्यादा इनकम होती है टेम्पल की। तो स्मॉल शॉप्स जो है, तो जैसे टी शर्ट्स होते हैं या टेम्पल की जो फोटोज़ होती हैं, फ़ोटो खिंचानी है, तो वो सब काफ़ी कुछ टूरिस्ट वाला होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शहर है वो नीचे 12 से 15 किलोमीटर नीचे है माउंटेन के।
क्रेजी। पर मतलब आप यहाँ हो, आप टेम्पल में, आप एनर्जी देख रहे हो, हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, तभी आप बुद्ध भगवान के बारे में सोचते थे या भगवान इन जनरल के बारे में सोचते थे? क्योंकि आई फील कि जो चीज़ें आपने अब तक कही है कि आपके नी में प्रॉब्लम हो गए, पहले दिन पर आपको एलर्जी हो गई, जब आप कोई महान चीज़ करने जा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग उस महान चीज़ करने के पहले आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो जाती है। यानी कि आपको इंजरी का सामना करना पड़ता है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उन मुश्किलों का सामना करके फिर जब आप उस पार निकलते हो, चट्टान के उस पार निकलते हो, आई फील कि फिर आप रेडी हो उस महान चीज़ के लिए। तो आपने कभी ये सोचा तभी कि आपकी कोई क्लेंजिंग हो रही थी आपके प्रोसेस के लिए, आपके मंखुड के प्रोसेस के लिए?
सच बोलूँ यार, मैं तभी प्लान ही नहीं किया था कि मैं मेरे को मॉन्क बनना है।
आप सिर्फ हीलिंग के
मोटिव? मैं मेरा सिर्फ मोटिव था, मेरे को 6 महीने का वीज़ा मिला है, मेरी इतनी मंथली फ़ीस है, अब मुझे मेरा पैर ठीक करना है और स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से निकलना है। मेरा सिंपल मोटिव था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी मेरे तक कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था। डेफिनेटली हमारे जो फैमिली में पेरेंट्स हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर है, तो काफ़ी कुछ बिलीव करते हैं शिव भगवान में, गणपति बप्पा में, सब चीज़ों में होती है पूजा। पर मैं ऐसे कुछ हार्डकोर स्पिरिचुअल या रिलीजियस मेरा कुछ कनेक्शन नहीं था। मैं डेफिनेटली कॉन्शियस एनर्जी में बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं फ़िलोसफी पहले से ही पढ़ता था, मुझे पढ़ने का शौक था, साइंस एंड फ़िलोसफी पहले से ही बहुत शौक था पढ़ने का। तो ये इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन मैंने इनिशियली कभी फील नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिन गुजरते गए, मैं मेरी जर्नी को कम ऑब्जर्व करने लग गया, लेकिन मेरे ग्रोथ और मेरी हीलिंग को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग गया। बेसिकली जो मेरा हीलिंग चालू, प्रोसेस चालू हुआ, तो मैं वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था, एज़ पर एस्टू कि मैं क्या बनूंगा या क्या मेरा हाल होगा आगे जाके। तो मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि यार मेरे को बस ठीक करना है मेरा पैर ठीक हो जाए। डेफिनेटली वो एनर्जी मैंने ऑब्जॉर्व की कि इतना काम, इतना शांत, इतना वॉरियर टाइप एनर्जी है, इतने छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ऐसी जगह में, ऐसा वाइब्रेशन अगर कोई भी आ जाए, आई थिंक कोई भी लाइफ में हील हो जाएगा वहाँ पर।
ये 2014 की बात है?
2014 दिसंबर की बात है। 2015 जनवरी, 1 जनवरी से मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया।
ट्रीटमेंट में हुआ क्या आपके?
ट्रीटमेंट में मेरे पैर में एवरी डे 30 नीडल्स होती थी एक्यूपंक्चर की, और एक्यूप्रेशर थेरेपी होता था, और जैसे धीरे धीरे, और थोड़े से मुझे वहाँ पर टेम्पल में उन लोग थोड़ी दवाई भी बनाते, जड़ी बूटियाँ बनाते, तो हर्बल मेडिसिन बोलते, तो उसको हर्बल मेडिसिन खानी पड़ती थी। और आई थिंक 4th वीक के बाद मुझे एक्सरसाइज देना चालू हो गए।
और आपको फील हो रहा था कि आपकी हीलिंग हो रही है?
डेफिनेटली वो थोड़ा यहाँ पर जैसे फिजियोथेरेपी में हम लोग वायर्स डालते हैं, थोड़ा करंट पास करते हैं, तो डेफिनेटली जब वो नीडल्स रहते तो फील हो रहा था मुझे, थोड़ा यू नो कोई एक्टिवेशन हो रहा है, थोड़ा कोई नर्व्स एक्टिवेट हो रही है, आई थिंक डेड हो गई होगी सर्जरी के वक्त, तो वो एक्टिवेट हो रही, तो फ्लो फील होता, थोड़ा टिंगलिंग सा ऐसा लग रहा है कि चींटियाँ चल रही हैं अंदर, वो फीलिंग आती थी।
दर्द होता था?
दर्द होता था जब नीडल जाता था, मेरे को नीडल्स से दूर रहना लगता है,
इंजेक्शन की तरह लगता।
हाँ, इंजेक्शन की तरह, वो प्रिक वाला फीलिंग मुझे पसंद नहीं था, बट तभी चाहिए था तो बैर कर लिया, और कुछ नहीं।
आई थिंक 2016 में 2017 में मेरी एक टेनिस एल्बो की कंडीशन हो गई थी, क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग करता था उसके पहले, और मेरा फॉर्म थोड़ा सा ख़राब था, डेडलिफ्ट हैवी डेडलिफ्ट करता था, बट हल्का सा फॉर्म ख़राब हो जाता था हैवी वेट के लिफ्टिंग के दौरान। तो तभी मैंने मैं फिजियोथेरेपी के लिए गया, जहाँ वो इलेक्ट्रिक, मैं प्रोसीजर का नाम भूल गया, बट वही वो इलेक्ट्रिक करंट्स पास करते थे, जेल्स लगा के फिर नीडलिंग करते थे, और उससे मेरी थोड़ी हीलिंग होने लगी. पर आई फील, और मैंने इस पॉडकास्ट में भी इस चीज़ की बात करी है, हमने एक सोलो पॉडकास्ट किया था, कि जहाँ मेरी एक्चुअल हीलिंग तब हुई जब मैं वेजिटेरियन बन गया और जब मैं रेकी करने लगा, थोड़ी सी रेकी करने लगा और हीलिंग रिलेटेड मेडिटेशंस करने लगा. और जब मैंने उस हीलिंग को इस फिजियोथेरेपी की हीलिंग के साथ कंबाइन किया, तब मेरी असली हीलिंग हो गई मेरे एल्बो की. एंड एल्बो की 100% हीलिंग एक्चुअली ओवर द ईयर्स हो गई, काफ़ी समय बाद. तो तब मैंने ऐसे मेडिटेशन का पावर डिस्कवर किया था और हीलिंग मेडिटेशन के पावर डिस्कवर किए थे. तो क्या आप तब भी, मतलब शाओलिन टेम्पल के इस फेज़ के दौरान, क्या आपने भी कोई हीलिंग मेडिटेशन करी थी?
यस, बिल्कुल. तो मैंने मेडिटेशन ऑलरेडी चालू कर दिया था इसके साथ जब प्रोसेस हो रहा था, तभी हमको ब्रेथ वर्क पे काफ़ी फोकस,
प्राणायाम
डेफिनेटली पूरा. देखो ये मैंने जैसे कहा कि हीलिंग जो है पूरा हमारे योग से ही आया हुआ है. तो हीलिंग में जो ब्रेथ वर्क होता था, हमारा जो प्राण की शक्ति, जो ब्रेथ की शक्ति बोलते हैं, उस पर काफ़ी फोकस होता था. तो एक बार फर्स्ट डे मेरा मेडिटेशन का, तो मैं वो अनुलोम विलोम वाला ब्रीदिंग कर रहा था मैं. और एकदम फास्ट और हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, जहाँ पर मतलब वैसी हैवी ब्रेथ की आवाज़ आ रही थी. तो मेरे को मास्टर ने लगा दिया, मेडिटेशन मास्टर ने लगा दिया. और स्कॉलर मंक रहते हैं, एकदम सीनियर रहते हैं,
मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग मास्टर.
या हर एक स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल में है, हर एक जगह जो टेम्पल में है, उन वो जो सीनियर मंक्स रहते वो लोग संभालते वो चीज़ों को. तो मेडिटेशन के मास्टर अलग हो गए. जो स्ट्रक्चर में जो बुद्धा की जो बड़ी बड़ी जो आइडल्स है, जो मूर्तियाँ हैं, उसका जो हिस्ट्री अगर फिलोसफी को समझाने के लिए, तो उनके मास्टर्स अलग है. सूत्रा के, स्क्रिप्चर्स के, ये सब चीज़ों के मास्टर्स अलग है. जो पढ़ना है हमको भजन का, या जो भी पढ़ना है हम भगवान का, जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर्स और हर एक मूर्तियों का स्ट्रक्चर अलग है और मास्टर्स उसके अलग है. तो वैसे मेडिटेशन सेंटर का जो था मास्टर अलग था, तो उनने मुझे फर्स्ट डे पर लगा दिया, क्योंकि मैं बहुत हैवी ब्रीदिंग कर रहा था. फिर बताया कि मेरे साथ एक कोस्टारिका का लड़का आया था, वो शॉर्ट टर्म, काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स आते शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसने मुझे समझाया ट्रांसलेट करके. वो भी थोड़ी टूटी फूटी चाइनीज़ बोलता था, तो उसने बोला कि ऐसे मत ब्रीथ कर, इसको नॉर्मल ब्रीथ कर. तो तभी मुझे समझ में आ गया, अगर मैं नॉर्मल ब्रीथ में मेरे पेन पर मैं रिलैक्स करूँगा, तो हीलिंग वहाँ पर चालू होती है.
मतलब विजुअलाइजेशन के साथ,
विजुअलाइजेशन टू पास, जो हम पास करते हैं हमारी प्राण की शक्ति, जो हम जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं नाक से, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं नाक से ही सांस छोड़ते हैं, हमारी जीभ जो ऊपर लगनी चाहिए टर्न होके, जो ऊपर लगनी चाहिए, माउथ क्लोज रहना चाहिए, सब टेक्निकल होता है. हमारे योग में भी ये सेम टू सेम है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में प्रैक्टिस और पढ़ाई भी की है. तो वही चीज़ वहाँ पर ही सिखा रहे थे हमको. तो तभी मैं समझ में गया कि ब्रेथ वर्क में कभी आवाज़ नहीं आती, ब्रेथ वर्क में हमेशा रिलैक्स, सबसे पहले रिलैक्स होना इम्पॉर्टेंट है. तो मेडिटेशन वो वैसा हीलिंग चालू हुआ था विद नीडल्स एक्यूपंक्चर.
आज भी आप ब्रेथ वर्क करते हो? आई एम श्योर,
डेफिनेटली. पूरा जो शाओलिन का कल्चर है पूरा ब्रेथ वर्क है. आपकी लाइफ और डेथ ब्रेथ पे डिपेंड होती है. तो शाओलिन का फास्ट पेस ब्रीदिंग होता है, शॉर्ट पेस ब्रीदिंग होता है, नॉर्मल पेस ब्रीदिंग होता है. ये तीन टेक्निक होती है जिससे आप शाओलिन मार्शल आर्ट, जैसे आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट एंथुजिस्ट हो, प्रैक्टिशनर हो, तो आपको पता है कि एज अ मार्शल आर्टिस्ट योर डिफेंस इज योर अटैक. आप किसी पर वार नहीं करना चाहते, आप हमेशा किसी से को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो आपका प्रोटेक्शन ही आपका हथियार है.
गूज़बम्स निकल गया.
तो ये हमको स्टार्टिंग से हमारे प्रिंसिपल सिखाए गए. तो वो ब्रेथ वर्क में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. वो ब्रेथ वर्क हमको हमारे फिजिकल ट्रेनिंग में भी लाना पड़ता है. अगर मैं अटैक करूँगा तो मेरे को कैसे एक्सहेल करना है, क्योंकि हमारा ये सब जो है ना, हमारी नाभि, नाभि के पीछे ही हमारी प्राण की शक्ति होती है. जो हम चाइनीज में बोलते हैं इसको ची, एंड ची का स्टोर हाउस होता है दांतियन. तो यहाँ से आपका प्राण निकलता है, आपकी ची निकलती है. तो इसको आप इंटरनली भी हीलिंग करते हैं, एक्सटर्नली भी बाहर से ला सकते हैं. तो इसको चीगोंग बोलते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ दिस इज कॉल्ड चीगोंग. इसका जो प्रयास होता है चीगोंग बोलते हैं.
और अब मान लो आप अटैक कर रहे हो, तो वही ची फिजिकल फॉर्म में निकल कर आती है.
ची फिजिकल फॉर्म में आपकी वो पार्ट, बॉडी पार्ट पर आती है, तो वो एक्सप्लोजिविटी से ब्लो होती है. अगर आप पंच कर रहे हैं या किक कर रहे हैं या किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, और या आपकी कोई चीज़ अपने बॉडी पे तोड़ रहे, जो अपने देखे होंगे हमारे जो शाओलिन मंक ब्रदर्स हैं, उनके वीडियोस, पीठ पे कुछ तोड़ रहे, सिर पे कुछ तोड़ रहे, पैर पे कुछ तोड़ रहे, वो सब हार्ड चीगों का हिस्सा है. तो वो सब इंटरनल कल्टीवेशन होता है, जहाँ पर एक्सटर्नली स्ट्रांग होते हैं.
फिर क्या हुआ ब्रदर? मतलब जब आपकी हीलिंग हो गई, मान लो आपकी हीलिंग हो रही थी नी की,
डेफिनेटली
ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि यार अब मैं एक स्टूडेंट नहीं बनूंगा, अब मैं लॉन्ग टर्म यहाँ रह जाऊँगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके साथ?
या डेफिनेटली थर्ड मंथ में मेरा हीलिंग ऑलमोस्ट 70% हो गया था, जैन फेब मार्च। अप्रैल में मम्मी पापा आए थे मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए कि सही सलामत है, खा रहा है पी रहा है ये, और तभी मैं बॉल्ड हो गया था, टकला हो गया था मैं। हमने डिसाइड कर दिया था कि यू नो मैं रहूँगा तो इन लोग की तरह ही रहूँगा, तभी मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही डिसाइड कर दिया था मैंने।
आप खुश थे?
हाँ मैं बिल्कुल खुश था, ऐसी एनर्जी जहाँ छोटे बच्चे, टीनेजर्स, बड़ों, वॉट एवर एज ग्रुप, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, जा रहे, वो एनर्जी अलग थी वहाँ पर, वहाँ पर एनर्जी डिफरेंट थी। बेसिकली जो शाओलिन टेम्पल का कैंपस है, जो जो स्मॉल सिटी डनफंग सिटी है, उसको बोलते हैं मैक ऑफ कुंगफू बोलते हैं, जहाँ पर सब स्कूल्स जो है सब कुंगफू और वुशु स्कूल्स है। वुशु इज़ अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, वुशु इज़ मॉडर्न मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। तो उसके वो दैट इज़ बेसिकली वो सब परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, जिसके जिसके लिए उनको पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन हम अलाउड नहीं है कॉम्पिटिशन में जाना।
जो ऋतिक रोशन ने क्रिश में किया था जब वो मार्शल आर्ट्स के साथ डांस करते हैं, वो दैट्स अ फॉर्म ऑफ वुशु?
No, that's not a form of wushu, okay. But that was what he did was very incredible. But wushu is completely different else. वो carpet पे होता है, एक wushu attire होता है, uniform होता है, shoes होते हैं जो right होते हैं, और certain forms होते हैं, long fist होता है, weapon fist, sorry, weapon forms होते हैं, long fist forms होते हैं, different type के combination forms होते हैं, तो अलग ही होता है definitely। आप देखेंगे काफ़ी online, आपको YouTube पे videos भी मिलते हैं wushu के, चाइना का नेशनल स्पोर्ट वुशु है। तो हम वुशु भी प्रैक्टिस करते थे और शाओलिन कुंगफू, ट्रेडिशनल कुंगफू भी प्रैक्टिस करते थे, तो हमारा दोनों का मिक्स था। तो ये शाओलिन कुंगफू ने मुझे मैंने एक्सप्लोर किया, और ये हमने हर एक बच्चा जो वहाँ पर आया, मैंने हर एक बच्चे को करते हुए देखा है, जो वुशु भी कर रहा है, जो ट्रेडिशनल कुंगफू भी कर रहा है, और वो अपने लिए कर रहा है, अपने बेटरमेंट के लिए कर रहा है।
आप बॉम्बे के बारे में सोचते थे तभी, इंडिया के बारे में सोचते थे कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं? आपको कभी ऐसे ही वो गर्लफ्रेंड की कमी फील हुई वहाँ? मतलब कि आप पूरी तरह से वहाँ अब्सॉर्ब्ड हो चुके थे?
एक्चुअली मेरा टेंथ के बाद जो जर्नी रहा है, मैं काफ़ी साल अब्रॉड रहा हूँ, जैसे फुटबॉल खेलने की वजह से, या मैं ग्रेजुएशन कनाडा करने गया था, और फिर उसके बाद ब्रीफ टाइम के लिए मुझे एक चस्का लगा था कि मैं MBA करना चाहूँगा, तभी एक थी हमारी गर्लफ्रेंड बहुत साल पहले, जिसकी वजह से कैरिड अवे हो गया था, जो अमेरिका करने मुझे जाना था MBA करने, लेकिन वो वर्कआउट नहीं, जैसे बोला आपने कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यू नो। तो जब मैं शाओलिन टेम्पल में था, मुझे एक्चुअली मैं कम्प्लीटली वर्ल्ड से डिटैच हो गया था। मैं अपने माँ बाप से भी बहुत कम बात करता था, मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बात करता था, जो मेरा प्ले स्कूल का फर्स्ट फ्रेंड है, अभी भी है, था, जो भी हम टच में रहते हैं, अभय नाम है उसका। तो वो उसको मैं मेरी डेली लाइफ की खबर देता था, लेकिन मॉम डैड से भी बहुत कम हो गया था, उससे भी कभी कभार बात होगी। तो ऐसे मेरे को कभी बॉम्बे की, यहाँ मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आई डेफिनेटली।
आप वहाँ खाते क्या थे? क्योंकि वो मशरूम से आपको एलर्जी थी और वहाँ से वेजिटेरियन खाना है।
चाइना में एक्चुअली आप सरप्राइज हो जाएंगे, इतने तरीके के फ्रूट्स हैं, इतने तरीके के फल हैं और सब्जियां हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स हैं कि आप बहुत वैरायटी मिलते हैं। लोगों को एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है कि अरे चाइना में वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, लेकिन अगर आप जाओ और खोजोगे आपको मिलेगा, आपको बहुत वैरायटी मिलती है वहाँ पे। तो वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी था, इस मशरूम एक ही चीज़ थी जो मैं नहीं खा सकता था, लेकिन बाकी तो प्योर वेजिटेरियन फूड, डिफरेंट वेजिटेबल्स था, टोफू तो डेफिनेटली था, राइस एंड सूप एंड नूडल्स वर द स्टेपल डाइट, वो हमारा स्टेपल था जो हमको रोज़ मिलता था। अलग अलग टाइप की हरी सब्जियाँ, आलू, रत आलू, स्वीट पोटेटो जो हम यहाँ पे खाते हैं, ये बहुत सारी वेराइटीज़ बहुत थी वहाँ पे खाने के लिए।
आपको नॉनवेज की याद आती थी
वहाँ? एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैंने आई थिंक एज एन एथलीट, आप भी एथलीट हो, तो हमारा विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहता है, अगर हम हमारा माइंड किसी चीज़ पर डाल देते हैं तो हम उसको मिशन बना देते हैं, और हम वो चीज़ हासिल करना ही चाहते हैं, या इस पार या उस पार, लेकिन हमको वो हासिल करना ही है, और इसी को ही हम वॉरियर मैंटेलिटी बोलते हैं, और जिसके पास भी ये मैंटेलिटी है वो वॉरियर ऑलरेडी है।
आई फील कि 2017 में मेरा नॉन वेज टू वेज स्विच हुआ था, स्विच होने लगा, और शायद सिर्फ पहला हफ्ता मेरे लिए मुश्किल था, बट उसके बाद वही वॉरियर मेंटालिटी किक इन हो गई, क्योंकि एटलीस्ट उस स्विच के दौरान मुझे पता चला कि हाँ, इस स्विच की वजह से मेरे अंदर चैनल्स ओपन हो रहे, मेरा विल पावर भी बढ़ रहा है. आई फील कि वेजिटेरियन खाना आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट बना देता है, और जब आपकी बॉडी लाइट हो जाती है आपका दिमाग भी लाइट हो जाता है.
yeah.
और उस लाइटनेस की वजह से आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है. पर ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से पता चलेगा. और ये मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि अरे नॉन वेज छोड़ो, वो बहुत पर्सनल डिसीजन होती है.
बिल्कुल.
पर जब आपकी बॉडी आपसे कहने लगती है ना कि शायद छोड़ दे, शायद छोड़ दो, तो फिर ट्राई इट, और फिर देखो कि क्या होता है, देखो आपके दिमाग के साथ क्या होता है, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है. आपको वो फीलिंग हुई वो टेम्पल में कि जब आप ने वो स्विच की?
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको एक रियलाइजेशन होता है, बॉडी स्टार्ट होती है लाइट फील होनी है, आपका मेंटल जो स्टेट होता है वो भी आपको लाइट फील होने लग जाता है, एक टाइप की क्लेंजिंग हो जाती है अंदर से. तो ये क्लेंजिंग आपके आपके मूड पे, आपके इमोशंस पे और आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करती है इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे. तो आपका प्रोग्रेस होने लगता है. ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी जो आपने कहा, तो डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व करी. जैसे मैं वेजिटेरियन बना, बॉडी एकदम लाइट हो गई. मुझे पेट की जो प्रॉब्लम होती थी, इंडाइजेशन या गैस जो भी होता था, वो नहीं होने लगा मुझे. और चाइना में डेफिनेटली हम लोग गर्म पानी पीते थे, इतना सिर्फ हॉट वाटर, चाहे वो विंटर हो या समर हो, गर्मी में सर्दी में हम सिर्फ केटल वाला जो गर्म पानी, उबला हुआ पानी पीते थे कंटिन्यूसली.
इससे क्या होता है, हॉट वाटर,
गर्म पानी, हॉट वाटर से काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं. आपकी क्लेंजिंग हो जाती है बॉडी की, आपको डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आती है. जो लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे ब्लोटिंग कम करना है या वेट कम करना है, ये वो सब चीज़ों का भी उस पर लाभ होता है, एक इफेक्ट होता है.
कि कितना गर्म होना चाहिए पानी?
और एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर गर्म होता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे हम चाय कैसे सिप करते हैं.
okay.
तो स्लोली, हाँ स्लोली स्लोली सिप कर करके वो अच्छा रहता है बॉडी के लिए.
आपको लगता है कि ठंडा पानी बुरा होता है आपकी बॉडी के लिए?
ठंडा पानी पीने के लिए डेफिनेटली बुरा रहता है बॉडी के लिए. ऐसे बोलते कि उससे वेट कम होता है या अपना जो बॉडी के जो सेल्यूलाइट्स होते हैं वो ब्रेक होके हमारा वेट कम होता है. बट ह्यूमन साइंस के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, जो हम ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी पीते हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर में तो ज़रा भी नहीं है. क्योंकि एक आयुर्वेदिक स्टडी में भी दिखा गया कि गर्म पानी पियो, जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है हमारा इनसाइड, तो उससे कम कभी नहीं पीना चाहिए या उससे ज़्यादा कभी नहीं पीना चाहिए. बोलते ना निवाइसा पानी, मटके का पानी, ये अच्छा रहता है पीने के लिए, बॉडी के लिए. लेकिन गर्म पानी इस बेसिकली क्लेंजिंग करता है बॉडी का पूरा.
ओके, ये पॉडकास्ट से शायद ये मेरा टेक अवे है. बट लेट्स गो बैक टू दैट मोमेंट ब्रदर, जब आपके माँ बाप आपको देखने आए थे. तो आपकी फैमिली ने देखा कि आपने हेड शेव किया है, आप आई एम श्योर कि आपके आंखें बदल गई होगी, तब तक फोकस आ गया आपके दिमाग में.
बिल्कुल बिल्कुल,
शायद वो एथलीट फिर से आप में जग गया था.
जग गया था डेफिनेटली. मम्मी डैडी आए थे मिलने के लिए, बहुत खुश थे. देखा कि मैं अच्छे एक एनवायरनमेंट में हूँ. कभी कभार होता है ना कि उनको उनको देखकर ही सहमत होती है कि हाँ अरे चलो अच्छे संगति में, यू नो हमारे माँ बाप तो ऐसे ही है, फ़ोन पे बोलेंगे हाँ ठीक है देखेंगे, ऐसा सब होता रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. जब देखकर एक्सपीरियंस करके उनको महसूस होने लगा कि अच्छे वातावरण में हूँ मैं, अच्छे से एटमोसफेयर में मेरा नर्चरिंग हो रहा है, मेरा ट्रेनिंग हो रहा है, पैर भी काफ़ी बेटर हो गया है. और मेरी मॉम काफ़ी रोती थी कि मैं अपने आप को क्यों ये लाइफस्टाइल से गुजार रहा हूँ, इतनी कैसे बोले इतनी सिंपल डिसिप्लिन तो मैं पहले से ही था बिकॉज ऑफ माय एथलेटिक लाइफ. बट जो बोलते हैं ना कि सिंपलिसिटी, जो सिंपलिसिटी दिखती नहीं है, डॉर्मेटरी में रह रहे हम, हमारा खुद का 20 लीटर वाला बैरल उठा रहे, घर पे ला रहे, वॉक कर रहे, सामान लेने जा रहे, जो भी बेसिक चीज़ें जो एक्चुअली सबको करनी चाहिए, तो वो एक सिंपल लाइफ ले रहे हैं. नॉर्मल ट्रेनिंग क्लोथ्स पहने, जीन्स टी शर्ट शर्ट ऐसे कुछ का कुछ आइडिया ही नहीं है वहाँ पर, सब लोग नॉर्मल ट्रेनिंग क्लोथ्स ही पहनते थे या जॉगर्स या ट्रैक पैंट्स या जो भी टी शर्ट पहनते थे. तो ये एक सिंपलिसिटी लाइफ मॉम ने मुझे देखा कि एक टिपिकल बॉम्बे बॉय जूहू जमुनाबाई का लड़का सडनली उल्टा स्विच मार के ऐसा हो गया. तो मॉम को भी एकदम शौक लगा कि यार मैंने पहली मेरी लाइफ जो थी, मेरे काफ़ी मतलब क्लोज मेरे बचपन के फ्रेंड्स ही थे, तो मुझे काफ़ी मतलब इन्वॉल्व होते थे उनसे, यू नो एक दूसरे के घर आना जाना, किसी का बर्थडे होना, ऐसे काफ़ी कुछ होता था बचपन में, हम सब ने स्कूल में यू नो एक्सपीरियंस किया है. तो वो लाइफस्टाइल को मैंने कम्प्लीटली गिव अप करके एक ऐसी लाइफस्टाइल ले ली जहाँ मैं सिर्फ वर्शिप कर रहा हूँ. मेरी लाइफस्टाइल जो ट्रेनिंग और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ लिविंग होती है, दैट डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि आगे का मत सोचिए, पीछे में मत घूमिए, बस जो भी है वो अब में है. तो ये चीज़ मैंने लिटरली वो प्रैक्टिस किया, मैंने लिटरली एवरी डे प्रैक्टिस किया, कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया. तो मॉम ने वो देखा कि यार इतने कम उम्र में, इतने कम एज में जो लोग मेरे उम्र के रहते इतना पार्टी करते या बाहर जाते, गर्लफ्रेंड ये वो, आई थिंक बिटवीन 22, 26, 28 इज़ अ वेरी नॉर्मल, एक नॉर्मल चीज़ है जो लड़के लोग आई थिंक बॉम्बे में करते हैं. जो मेरे भी फ्रेंड्स मैंने देखा ही करते हैं, जो फैमिली वाले भी रहते हैं, तो भले ही वो लोअर इनकम फैमिली से हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो या अपर क्लास से हो, जहाँ से भी हो यार, डजेंट मैटर. तो सब लोग ये लाइफ स्टाइल से गुजरते ही है जहाँ पे गर्ल बॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है या फ्रेंड सर्कल का इन्वॉल्वमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द स्थिति ऑफ द फैमिली. तो वो ट्रांजिशन से निकल के कम्प्लीटली 360 डिग्री स्विच होके, पूरा स्विच होके, मम्मी ने मुझे देखा तो मम्मी रोने लग गई कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो इतना प्रैक्टिस कर रहा है, इतना सिंपल खाना कर रहा है, अपने लाइफ में रह रहा है, डॉर्मेटरी में रह रहा है. तो मॉम को थोड़ी फिक्र होने लगी कि तू खुश है, तू कर पाएगा, और कितना टाइम करना है. तो वो जो विजिट था ना मम्मी पापा का, मेरे को रियलाइज़ होने लग गया यार, अगर मैं 6 महीने के बाद चले गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा. तो तभी मैंने अपने आप को एवरी डे, आई थिंक फॉर 1 वीक, जब मॉम डैड जाने के बाद, मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया, मैं अगर चला गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या मोटिव है ये 6 महीना करने का. अगर मैं इतने टाइम में इतना बेटर हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को और टाइम दे के और बेटर क्यों नहीं हो सकता. तो मैंने प्लान किया कि मैं और 6 महीने और या 1 साल मैं रहूँगा, जिससे मेरा प्रैक्टिस भी बेटर हो जाए, जिसमें मेरी लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, और तभी मैं अफोर्ड कर पा रहा था रहने के लिए, और डैड से भी थोड़ी सी हेल्प मिली थी मुझे. तो तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं थोड़ा और रहता हूँ, और मेरे को ये प्रैक्टिस करना है, मुझे अपने आपको लाइफस्टाइल बनाना है, ये अपने आप की लाइफस्टाइल बनानी है मुझे.
ब्रदर एक मिनट, आई फील कि आप में ना शायद 10 पॉडकास्ट है आपके अंदर, 10 पॉडकास्ट आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग. बट ये पार्ट 1 को मैं यहाँ एंड करना चाहूँगा. ये शायद आपकी इनिशियल जर्नी है, यहाँ तक आपकी नी की हीलिंग हो गई.
बिल्कुल.
इसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग हुई, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ब्रदर.
बिल्कुल.
सो थैंक यू, आपने इस पॉडकास्ट में आपकी इंट्रोडक्शन दे दी. इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे, जहाँ की इन डेप्थ ट्रेनिंग के बारे में बातें होंगी.
बिल्कुल. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी.
वी विल हैव यू बैक.
थैंक यू
दोस्तों. तो ये था हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 1. मैं ये मानता हूँ कि हर धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ, हर धमाकेदार किताब के साथ, आपको उस पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन, उस किताब की इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी चाहिए. और अगर इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी की बातचीत हो रही है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रिटेन कीजिए इस इंस्पिरेशन को, इस इन्फॉर्मेशन को. पार्ट 2 में इस स्टोरी के सेकेंड हाफ पर हम बातचीत करेंगे, और जो चीज़ें हर्ष भाई ने स्पेसिफिकली शाओलिन वॉरियर मंक बनकर सीखे, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे. लुक आउट फॉर पार्ट 2.